प्रभु की शरणागति कैसे प्राप्त करें, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षैषां मा शुचि। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरणागत हो जा या मेरी शरण में आ जा। यदि तू ऐसा करता है तो क्या होगा, तेरे सारे पापों से मैं तुझको मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो शरणागति जिसकी हो जाती है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जहां शोक का कोई भी स्थान नहीं, वो होगा कैसे, कंडीशन क्या है, सर्वधर्मान परित्यज। ये धर्म क्या है, जो विभिन्न प्रकार की धारणाएं हमारे मन में बैठी हुई हैं कर्म करने के बारे में, सारी धारणाओं का मनुष्य त्याग कर देता है, पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देता है। तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। उसकी सोच में, उसकी करनी में ये बात पूरी तरह से प्रकट होती है, इसमें कोई वहम नहीं होता, इसमें कोई अज्ञान नहीं होता। तो जिस समय हमारी ये हालत हो जाए कि 100% ईश्वर ही हमको करता नजर आए, मैं करता हूं ये भावना मेरे अंदर से लोप हो जाए, तो वह स्थिति शरणागति की है। तो इसीलिए शरणागति कोई साधारण चीज नहीं है, शरणागति हमारी मंजिल है, हमारा लक्ष्य है। तो इस शरणागति को प्राप्त करने के लिए मैंने आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है। जरा विचार करके देखें, यदि मेरे अंदर कोई भी वासना बची हुई है, इच्छाएं बची हुई हैं, तो क्या मैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने मन और अपनी देह का उपयोग नहीं करूंगा? मेरी मजबूरी होती है ये कि जब तक मन में इच्छाएं हैं, मैं उन इच्छाओं का गुलाम बनकर अपनी मन इंद्रियां देह का इस्तेमाल करता हूं और उन इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश करता हूं। कभी सिमरन भी करने बैठता हूं तो इच्छाएं मुझको परेशान करती हैं, उसका चिंतन मन में चलता रहता है। फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु ये मेरी इच्छा और पूर्ण कर दे, फिर मैं चैन से तेरी याद करूंगा। ये हमारी प्रैक्टिकल स्थिति होती है। इसका सीधा सा मतलब है, यदि मैं इस बात के प्रति ईमानदार हूं कि मुझको ईश्वर की शरणागति चाहिए, तो मेरे अंदर यह समझ भी होनी चाहिए कि हर इच्छा को मैंने मन से एलिमिनेट कर देना है, मन से खत्म कर देना है। उस इच्छा को खत्म करने का रास्ता ही धर्म मार्ग है, उसी को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। उसी को शरणागति का मार्ग कहते हैं, कोई भी नाम आप उसको दे लीजिए। तो जीव इच्छाओं का गुलाम है, इच्छाएं उसके मन के अंदर पल रही हैं, तो इसीलिए इस जीव का मन से छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक ये इन इच्छाओं को, जिसको हम सांसारिक इच्छाएं कहते हैं, विष रूप ना समझे। इसीलिए संत अविलास में महाराज जी ने निर्णय कर दिया, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। एक टैबलेट आपके हाथ में दे दी जाए, शुगर कोटिंग उसके ऊपर हो, अंदर से कड़वा नीम हो उसके, जब खाओगे तो कौन सा टेस्ट आएगा आपको? नीम की जगह यदि जहर अंदर हो तो क्या आपकी दुर्गति होने वाली है? देखने में सुंदर है वो, निगलने में भी मीठी है वो, शुगर कोटिंग है उसके ऊपर, लेकिन अंदर उसके जहर है, तो खत्म करेगी या नहीं करेगी आप? इसीलिए वाणी करिए, जिन भोगा सो अंत पछताना। इस संसार का जिसने भी भोग किया वो अंत में पछताकर इस संसार से जाता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, संसार के सुख भोग काल में अमृत के समान प्रतीत होते हैं, परंतु परिणाम में, नतीजे में वो विष के समान है। और इसकी तुलना में दूसरी बात भी कह रहे हैं वो, साधना के काल में, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने के काल में ये साधना विष के समान प्रतीत होती है, अर्थात दुखदायी प्रतीत होती है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है। लंबी चौड़ी बातें हम ना भी समझें गीता की, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है। प्रभु का निर्णय है ये, हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है, अज्ञानी बुद्धि है, तुरंत जिसमें स्वाद आता है उसको पकड़ लेती है, परिणाम की चिंता नहीं करती है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो परिणाम को देखता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक साधारण विद्यार्थी है वो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो कहता है खेलने में जो सुख है वो पढ़ने में कहाँ है, वो खेलता है, खेलने में सुखदायी प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में जिस समय फेल का नतीजा हाथ में होता है, परिणाम में वो विष के समान है। और जिस विद्यार्थी ने माता पिता का कहना माना, खेल छोड़कर नियमित पढ़ाई की, तो पढ़ने के काल में खेल छोड़कर पढ़ना ये विष के समान प्रतीत होता है, कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन जब रिजल्ट हाथ में आता है तो फर्स्ट डिवीजन वहां होती है, वो रिजल्ट उसका अमृत के समान है। तो हमने दो में से एक रास्ता चुनना है, जिसका परिणाम फेल है, जिसका परिणाम जहर है वो रास्ता ठीक है, या जिसका परिणाम अमृत है, जिसका परिणाम सफलता है वो रास्ता ठीक है। ये मन इंद्रिया नहीं देखेंगे इसको, इसको बुद्धि देखेगी। और बुद्धि कौन सी देखेगी? जो ईश्वर के ज्ञान से प्रकाशित होगी। तो इसीलिए शास्त्र का निर्णय पढ़कर टाल देने के लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए गहरी चेतावनी है। यदि उस पर ध्यान नहीं दिया तो याद रखिए, आप अरबपति भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी कूड़े में चली जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। 100% یہ پکی بات ہے آپ کی زندگی پوری کی پوری برباد ہونی ہی ہے، بلکہ آپ کی جس حالت میں پیدا ہوئے تھے اس سے زیادہ درگتی کی حالت میں آپ سنسار سے ودا ہو گئے، یہ آپ کی حالت ہوگی۔ تو اسی لیے وقت رہتے یدی ہم سدھر جائیں، اور سدھرنے کا راستہ یہی ہے، ستپرشوں نے جن باتوں کا شاستروں میں ڈکلیریشن کر رکھا ہے، جس کا نرنے کر رکھا ہے، جس کی گھوشنا کر رکھی ہے، اس پر ہم سنشے نہ کریں۔ یدی اپنا کلیان چاہتے ہیں تو اس کو ٹالے نہیں، پورے منویوگ سے اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ ٹھیک ہے ہر ویکتی کی سامرتھ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بڑا تیاگ کر سکے، سب کچھ اس کی آشا بھی نہیں کرتے، اس کے لیے حکم بھی نہیں دیتے، وہ تو بڑی سادھارن سی بات سے شروع کرتے۔ مہاراج جی کہتے ہیں، پریمی جو تم غلط کرم کر رہے ہو، غلط کمائی کر رہے ہو، غلط ویوہار کر رہے ہو، اس کا تو تم کو بودھ ہے، سب سے پہلے تم اس کا تیاگ کرو۔ اب بتاؤ مجھے کون سی کٹھن بات کہہ رہے ہیں سب کچھ؟ ایک چور چوری کر رہا ہے، چوری کر کے کمائی کر رہا ہے، تو اس کو تو یہ ہوش ہونی چاہیے، وہ جانتا بھی ہے ہاں یہ غلط کرم ہے، وہ جانتا ہے سماج میں اس کرم کو غلط کہا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی ملتی ہے، جانتا ہے وہ، لیکن پھر بھی لالچ وش، لوبھ وش، موہ وش چوری کرتا ہے۔ یدی وہ کسی بدھیمان کی بات مان لے کہ چوری کر تو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے سفل بھی ہو جائے، لیکن اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی، اور سزا جب بھوگنے کا نمبر آئے گا تو بڑا پچھتائے گا، بڑا روئے گا کہ کسی نے مجھ کو چوری کرنے سے روکا کیوں نہیں۔ جس پرکار سلطانہ ڈاکو کی جو ماں تھی، جب وہ پکڑا گیا، سزا ہوئی اس کو، تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ماں کو جو پاس لایا گیا، اس سے ملا، تو اس کی ناک کاٹ لی اس نے۔ تو ماں نے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تجھ کو پالا۔ انہوں نے کہ ماں، پہلی بار میں ایک پینسل چوری کر کے لایا تھا، اور تو نے اس کو رکھ لیا، یدی اسی سمے تم اس کو سزا دیتی تو اس کے بعد میں چوری نہیں کرتا، تو اس لیے آج اس حالت میں تو نے مجھے پہنچایا ہے۔ تو گرو آپ کے لیے ماں روپ میں ہے، آپ کے لیے پتا روپ میں ہے، وہ جو آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے اس کی ہر بات میں ہماری بھلائی ہے، ہر بات میں بھلائی ہے، اس کی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جس میں میرا بگاڑ ہو۔ تو اس کی بات ماننے سے میں کیوں ڈرتا ہوں؟ میں اس دن کو یاد کیوں نہیں کرتا کہ میری انت میں کیا دردشا ہونے والی ہے، جب جو جیون میں نے گرو کے مارگدرشن کے ورودھ جیا ہے، وہ مجھے کس دردشا میں لے جائے گا، اس کے بارے میں آج میں کیوں نہیں سوچتا؟ تو یدی میں سوچوں گا تو پھر میری حالت بھی سلطانہ ڈاکو جیسی نہیں ہوگی۔ تو گہرے پتن کے گڈھے میں جا رہا ہوں، سنساریوں کی نقل کر کے، سنساری طریقے سے جی کر۔ یہ اندریہ بھوگوں کا جو مارگ ہے، یہ سنساری سکھ کا جو مارگ ہے، یہ منشیہ کو، جیون کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس لیے گیتا نے اسپشٹ نرنے کر دیا، رجسہ تو پھلم دکھم، اس بھوگواد کا پرینام، رجوگن کا پرینام دکھ ہے۔ تو بھی اس دکھ میں ڈوبے گا، تیرا پریوار بھی ڈوبے گا، اور تو دیش میں یدی بھوگ بڑھا رہا ہے تو تیرا دیش بھی ڈوبے گا، اور بدھی اتنی کنٹھت ہو جائے گی کہ دوسرے دیشوں پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے گی، ان کو مار کر بھی ان کی سمپتی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گی۔ مغلوں کا راج بھارت میں آیا، انہوں نے بھارت کو لوٹا, انگریزوں کا راج بھارت میں آیا, انہوں نے بھارت کو لوٹا. انگریز سمجھتے تھے دنیا میں ہم سے بدھیمان کوئی نہیں ہے, کیونکہ لٹریچر میں آج بھی انگلینڈ دنیا کا لیڈر ہے. جتنا لٹریچر انگلینڈ کا بکتا ہے دنیا میں آج بھی, سب جانتے ہیں اس بات کے لیے. لیکن بدھی کہاں کھڑی ہوئی ہے, بھوگ وادی بدھی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ اتنے وچارک, اتنے سائنٹسٹ, اتنے بدھیمان جسے انگلینڈ میں پیدا ہوا ہوں, جس کا سوریاست کبھی ہوتا ہی نہیں تھا, ارتھات پورے وشو میں اس نے راج کیا. کیا کارن ہوا کہ وہ انگلینڈ برباد ہو گیا؟ دوتیہ وشو یدھ میں یہ حال ہو گیا انگلینڈ کا کہ گھروں کی جو لوہے کی گرل تھیں ان کو بھی سرکار نے نکلوا کر ان کا لوہا پگھلا کر ان سے شست تیار کیے لڑنے کے لیے. کیا دردشا انگلینڈ کی ہوئی, کہاں گئی اس کی بدھیمانی, کہاں گئی اس کی شان شوکت, کہاں گیا اس کا دنیا کا راج؟ یہی ہونا ہے. شاس کا نرنے غلط نہیں ہو سکتا. رج سہا تو پھلم دکھم, رجو ان کا پرنام دکھ ہے. یہ نرنے شاس کا ہے, یہ ایشور کا نرنے ہے, یہ کیسے غلط ہو جائے گا؟ تو یدی میں نے رجوگن کا راستہ پکڑا ہے, پاروارک سکھ بڑھانے کا مارگ پکڑا ہے, تو میری منزل مجھ سے دور جا رہی ہے, دکھوں کی منزل نزدیک آ رہی ہے. سکھ بھوگنے کے لیے میں یہ رچنا رچ رہا ہوں, زندگی داؤں پہ لگا رہا ہوں, لیکن مجھ کو پتا نہیں ہے کہ میں دکھ کے بیج بو رہا ہوں. کیونکہ مہاراج جی صاف کہتے ہیں ہر سکھ دکھ میں بدل جاتا ہے, ہر سکھ دکھ میں بدل جاتا ہے. جس نے گھر میں سکھوں کا انبار اکٹھا کیا ہے تو کتنے دکھ جھیلے گا وہ بھوشیہ میں, آپ کلپنا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سکھ ہیں یہ زہر سمان ہے, شاس ایسے ہی نہیں کہہ رہے. جب بدھی ہوش میں آئے گی, ستو گولی بدھی ہوگی, تب یہ آپ کو نظر آئے گا شاس تو ٹھیک کہہ رہے تھے, میں نے ہی ان کی اوگیا کی, میں غلطی کر گیا. اس لیے منشیہ جنم بڑا ہی ہوش میں جینے کی ضرورت ہے, منمانی طریقے سے جینے کا نہیں ہے یہ منشیہ. اور جو سنسارک بدھی لے کے آپ گھومتے ہیں, سنسار جو چیزیں سیکھتے رہتے ہیں, یہ اگیانی بدھی ہے, یہ تو آپ کو ڈبوئے گی ڈبوئے گی. ست بدھی یدی کوئی سکھا سکتا ہے, کوئی دے سکتا ہے, یدی کسی کے پاس ہے وہ گرو ہے, اسی کو ہم اوتار کہتے ہیں. اس کے جو وچن ہیں اس کو شاستر کہتے ہیں. تو جس منشیہ نے شاستر پڑھنے میں, اس کو سمجھنے میں محنت نہیں کی, وہ مورخ کا مورخ ہی رہنا ہے, اگیانی کا اگیانی رہنا ہے, چاہے اہنکار اس کا سنسار سے سنسار کی سفلتا پراپت کر کے کتنا ہی بڑھ جائے, لیکن وہ اگیانی ہے. بھوشیہ میں دکھ کا گڈھا وہ خود کھود رہا ہے, اس سے بچ نہیں سکتا. یہ ست پرشوں کا فائنل نرنے ہے, وہ گہرے دکھ سے بچ نہیں سکتا. اسی لیے کبھی بھی سنسار میں زیادہ سکھ بھوگنے کی کوشش مت کرو. یدی پراربدوش ایشور نے آپ کو سکھ کے سادھن دے ہی دیے ہیں, تو شاستروں کا حکم یہ ہے کہ ان سادھنوں کو دوسرے کا دکھ دور کرنے کے لیے اپیوگ کرو. دو ہاتھ الیچیے گھر میں باڑ ہے دام, کو سنت واڑی کیا کہتے, دو ہاتھ الیچیے گھر میں باڑ ہے دام. گھر میں یدی سمپتی بڑھ جائے, سکھ بڑھ جائے, تو دونوں ہاتھوں سے اس کو دوسرے کو دینے کی کوشش کرو, نہیں تو تمہاری ناؤ تو ڈوب جائے گی. اور جس ناؤ میں پانی بھر جائے وہ ڈوبے گی یا بچے گی؟ تو یہ ناؤ میں پانی کی طرح سے ہیں سنسار کے سے, جتنی جلدی ان کو ناؤ سے باہر کر دو اتنا ہی اچھا ہے. اسی لیے منش کے پاس جینے کا کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے, یدی وہ صحیح سوچتا ہے تو, کہ اس نے مریادا کا جیون ہی جینا چاہیے. یہ فیشن پرستی, سکھوں کی دوڑ, इक्विपमेंट्स की दौड़, दुनिया की चकाचौंध दे दे के मैं जो ये सुखों के साधन इकट्ठे कर लेता हूँ, चमक दमक की बिल्डिंगें बना लेता हूँ और हर तरह मुझको चमक ही चाहिए, ये नकल आपको मनुष्य नहीं रहने देगी, शैतान बना देगी। जैसे बड़े बड़े देश शैतान बन गए, इंग्लैंड शैतानी तो बना, ये तो क्यों हमले करता, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करने आया था इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कलकत्ते में बिजनेस करने आया था, नेत में फतूर आया तो पूरे हिंदुस्तान पर राजी करना शुरू कर दिया, लाखों गरीबों को मार दिया उसने। इस पाप का परिणाम क्या हुआ, इंग्लैंड बर्बाद हो गया। तो संसार में सुख ज्यादा भोगने वाले कहीं ना कहीं यही काम करते हैं, उनको पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, उनको पता नहीं होता। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं वो हिंसा कर रहे हैं, इसीलिए भोगवाद का रास्ता तो जहर है। समता विलास में चैप्टर पढ़ भी लें, वहां निर्णय स्पष्ट है, हम सबको पढ़ना भी चाहिए। यदि शरणागति सीखनी है तो भोगवाद का निर्णय गहराई से पढ़ना चाहिए और उस एनालिसिस को मैं कहूंगा ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार कर लेना चाहिए। महीने में एक बार उस चैप्टर को गहराई से पढ़कर, हर वर्ड को अमृत वचन समझकर, ये अमृत वाक्य है क्योंकि जहर से आपको दूर कर रहा है, जहर से मुक्त कर रहा है, इसलिए अमृत वचन है। महीने में एक बार पढ़ो भोगवाद का क्या परिणाम है तो शायद आपकी बुद्धि अलर्ट हो जाए, इस सुखों के मोह से मुक्त हो जाए। तो सादा जीवन जो है वो देवताओं की रहनी है, महाराज जी की वाणी कह रही है। तो देवताओं का जीवन का मतलब ये है शांति का जीवन है, ईश्वर प्राप्ति का जीवन है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के बिना कोई शांति का जीवन नहीं होता, याद रखिए। कोई कहे मैं तो सफेद कपड़े पहनूंगा, शाकाहारी भोजन करूंगा, 500 रुपये महीने में गुजारा करूंगा, तो आप समझ क्या समझ रहे हैं, उसकी बुद्धि सतोगुणी हो जाएगी, इनसे बुद्धि सतोगुणी नहीं होनी। सतोगुणी बनने में ये सहायता तो करेगी लेकिन इनसे बुद्धि सतोगुणी नहीं हो जाएगी, सतोगुणी तो ईश्वर की भक्ति से ही होगी, और ईश्वर की भक्ति वो कर सकता है जिसने गुरु वचनों को ईश्वर का अटल हुक्म समझा, ईश्वर भक्ति तो वो कर सकता है, गुरु वचन को जिसने ईश्वर का अटल हुक्म जाना हो, क्योंकि विधि का जो विधान है, जो इटर्नल लॉ है, वो तो शास्त्र ही बताते हैं, आप और कौन जानता है, संपूर्ण प्रकृति के रहस्य को कोई दुनिया का साइंटिस्ट ना आज तक जान सका, ना जान सकता है कभी, इस प्रकृति के रहस्य को केवल सत्पुरुष ही जानता है, वो इसके स्रोत पर बैठा हुआ है, जहां से प्रकृति का उदय होता है वो उसके स्रोत पर बैठा हुआ है, उसके अलावा प्रकृति का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। इस प्रकृति का वर्णन महाजी कह रहे हैं, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार। कर्तापन से मनुष्य के अंदर वासना प्रकट हुई है, वासना से तीन भूत की कामना प्रकट हुई है, पांच भूत की कामना प्रकट हुई, पांच भूत की मतलब पांच तत्वों की यह प्रकृति बनी हुई है, पांच तत्वों का यह देह है, सारे भोग तो देह और संसार के बीच में होते हैं। तो बताइए प्रकृति के स्रोत से कामना प्रकट हुई है, प्रकृति का स्रोत ही कामना में खड़ा हुआ, और गुरु कह रहा है कि प्रकृति का स्रोत तीन गुणों को जन्म देता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। आम संसारी जीव ज्यादातर या रजोगुणी होते हैं या तमोगुणी होते हैं, सतोगुणी तो कोई कोई होता है, तो सतोगुणी कौन होता है? जिसकी डोर ईश्वर के साथ जुड़ी हो वो सतोगुणी होता है। तो इसीलिए वो त्याग के मार्ग पर चलता है, और जो भोग के मार्ग पर चलता है वो रजोगुण से तमोगुण में ऑटोमेटिकली आ जाता है, रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है प्रकृति। इसीलिए महाजी कह रहे हैं हर सुख दुख में बदल जाता है। इसीलिए जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। तुझे ये सोचना है जब सुख स्थिर रहना ही नहीं है, उसने दुख में बदल जाना है, तो ये घना कलेश नहीं है जीव के लिए? मैं जलेबी खाता हूं तो बड़ी मीठी लगती है मुझको, बड़ा स्वाद लगता है उसका, बार बार उसकी याद आती है खाने की, तो खाते समय तो वो अमृत लग रही है, लेकिन गीता कह रही है परिणाम में वो जहर के समान है, और इसका नतीजा तो जिंदगी में आगे भोगेगा, एक जलेबी तेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, क्योंकि कितने तरह के स्वाद तेरे अंदर पैदा करेगी, कितने तरह के खाने की लालसाएं तेरे अंदर पैदा करेगी, उसकी गिनती भी नहीं। एक चीज तेरी पूरी जिंदगी डुबो सकती है, इतना जहर एक चीज में भरा हुआ। इसलिए ये सब बातें ज्ञान दृष्टि से ही, सत्पुरुषों की बातों को ध्यान से पढ़कर, जो निर्णय उन्होंने दिया है उस निर्णय को एक्सेप्ट करके, जब मैं संसार में चलने की कोशिश करता हूं तब मैं इस जहर से बच जाता हूं। लेकिन जो सत्पुरुषों के निर्णय को एक्सेप्ट करेगा तो वो यही नहीं रुकेगा कि संसार के भोगों को मैं मर्यादा में भोगूं, और भोग इकट्ठे भी करूं तो ईमानदारी से इकट्ठे करूं। अरे ईमानदारी से इकट्ठे करोगे तो कम भोग इकट्ठे कर पाओगे ना, बेईमानी से करोगे तो ज्यादा इकट्ठे कर लोगे और जल्दी मरोगे आप। ईमानदारी से इकट्ठे करो ताकि जरूरत के हिसाब से तेरी कमाई हो। तो जब तू गुरु की बात मानकर संसार की कमाई करेगा, संसार के भोग इकट्ठे करेगा, पांच नियम का पालन करके ईश्वर के मार्ग पर चलेगा, तो तेरे अंदर ईश्वर का प्रेम प्रकट होगा। नहीं प्रकट हुआ तो ईश्वर के आगे तू रोएगा कि प्रभु कृपा करो, संसार तो मैंने देख लिया, ये तो दुख रूप है, बड़ी मुश्किल से इसमें से मैं विचार के द्वारा निकल पाया हूं, पहले तो विचार ही नहीं था मेरे पास, विचार के द्वारा ये जहर समान मुझे लगने लगा है, अब आपके पास कैसे पहुंचूं, उसके लिए कृपा तो करो। पांच नियम पालन करोगे, सिमरन करोगे, सिमरन में मन नहीं लगेगा क्योंकि आदतें तो संसार की पड़ी हुई ना, इसमें तो संसार की याद करेगा, संस्कार तो कई जन्मों के संसार के ही है, ये कैसे ईश्वर की याद करेगा, तो तुम्हारे अंदर तड़प पैदा होगी। संसार में तो आपके लिए कुछ रखा नहीं है, रखा है ईश्वर के पास, शांति वहां है, आनंद वहां है, जीवन की सफलता वहां है, तो ईश्वर के आगे रोने के अलावा रास्ता क्या बचेगा आपके पास? तो तुम्हारा दिल रोएगा, प्रभु कृपा करो। बहुत देर से सिमरन कर रहा हूं, मन की बेचैनी मेरी कम नहीं हो रही है। तो रोने वाले की आवाज सुनी जाती है, प्रभु बहरे नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे मेरी माँ है, मेरी क्यों नहीं सुनेगी वो? अरे मेरे अंदर भाव तो हो कि वो मेरी माँ है, ईश्वर मेरा है, हमारे अंदर ये भाव कहाँ है? जिसने उसको माँ समझा, जिसने उसको अपना समझा, उसकी तो पुकार सुनी जाती। वो कहते थे कि बालक जब माँ को चाहता है तो खिलौने फेंक देता है, किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता, तो माँ समझ जाती है अब इसको मेरी गोद चाहिए, तो गोद में ले लेती है उसको। तो हमारी भी यही स्थिति होती है जब ईश्वर के लिए रोते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए तभी रो सकते हैं हम जब संसार के दुखों से मन उकता जाए। भोग को तो कभी उकताएगा नहीं, ये विचार से उकताएगा। ये संसार जहर रूप है, जब ये महाजी के वचन के ऊपर विचार करोगे समता विलास पढ़ के, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। सतपुरुष क्या झूठ लिखेगा इस बात को? आपकी बुद्धि कह रही है कि सतपुरुष झूठ लिख देगा? तो मैंने जो सुख के मापदंड संसार में तैयार किए हैं, जितनी जिंदगी खर्च की है, अब मेरी इच्छा होती है कि मेरे बेटे मुझसे 4 कदम आगे निकले और प्रगति करनी चाहिए ना। इतनी प्रगति तो मैंने उनको करके दी है, तो बच्चों ने अपनी भी तो मेहनत करनी है, 4 कदम आगे निकलना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग, ये लक्ष्य बच्चों को देके हम जाते हैं। बच्चों के साथ ये महापाप है जो हम करके जाते हैं, लेकिन हमको होश नहीं है। माता पिता का कर्तव्य था कि बच्चों को बुद्धि को होश में लाते, सादे जीवन की आदत डालने की कोशिश करते। सफलता मिलती ना मिलती वो बात की बात है, लेकिन तुझे इतना तो आत्मसंतोष होता कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। परिणाम ईश्वर के हाथों में, पता नहीं वो कैसे संस्कार लेकर आए, लेकिन मैंने जब उनको ट्रेनिंग ही भोगों की दी है, भोग बढ़ाकर दिए हैं उनको, तो फिर मैं ये पछतावा मेरे अंदर कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। तो शरणागति आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप अपनी बुद्धि का निर्णय बदले। निर्णय पहले बदलेगा, शरणागति बाद में आएगी। यदि निर्णय ही नहीं बदला तो शरणागति की बात करना तो बेईमानी है। क्यों शरणागत हो गए ईश्वर की? आप तो भोगों की शरणागत हो गए, संसार की माया के शरणागत हो गए। इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ईश्वर की शरणागत होने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि संसार की धारा ऐसे ही है जैसे बाढ़ का पानी नदी में बहता है ना, कोई उसमें तैरने वाला लेट जाए तो ऑटोमेटिकली समुद्र तक चला जाएगा वो। लेकिन यदि बचना उस बाढ़ से, उल्टी गति में उसको चलना पड़ता है, हाथ पैर चलाकर मेहनत करनी पड़ती है, तब किनारा पकड़ता है। तो ईश्वर की शरणागति धारण करनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का जो परिणाम है वो अमृत रूप है। महाराज जी ने जब उस ईश्वर का परम आनंद प्राप्त किया तो महाराज जी को अफसोस हुआ क्या? सारा परिवार यही पीछे लगा रहता था महाराज जी के पीछे, बेटा कुछ कमाई कर, संसार कैसे चलेगा। लेकिन वो बालक जानता था कि संसार में क्या रखा है, क्योंकि पिछले जन्मों की कमाई थी उनकी, बुद्धि होश में थी बचपन से, अब वो बेहोशी वाला काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने जंगल की राह पकड़ ली, बचपन से ही जंगल की राह पकड़ ली। दुनिया वाले तो जीने नहीं देंगे, वो जानते हैं, सारे ही अज्ञानी हैं, किसके आगे रोए। महाजी कहते हैं प्रेमी गांव वाले भी शैतान होते हैं, वो भी फप्तियां कसते हैं, उनसे भी छुपकर सरकंडों के बीच में बैठ के मैं दिन व्यतीत किया करता था कि किसी गांव वाले की भी नजर ना पड़ जाए, क्योंकि जंगल में भी गांव वाले दिन में घूमते रहते हैं लकड़ियां काटने के लिए। सरकंडों के बीच में बैठ के महाजी दिन व्यतीत कर दिया करते थे, रातें तो खुली छत के नीचे व्यतीत करते ही थे। तो जिसकी बुद्धि पूरी तरह होश में आ चुकी है वो अपने जीवन का 1 मिनट भी बिना ईश्वर की शरणागति के, बिना ईश्वर की सिमरन के व्यतीत नहीं करता, ये उसकी स्थिति होती। हमारी भी अंत में यही स्थिति होनी है, लेकिन आज जहां खड़े हुए हैं वो परहेज करने की स्थिति। मैंने संसार के भोगों से परहेज करना है। इसी को महाजी सादगी का रास्ता कहते हैं, और सादगी कुछ नहीं। और ईश्वर की स्थिति जो है, ईश्वर प्राप्ति की जो स्थिति है, वहां महाराज जी कह रहे हैं जब तक मन के अंदर एक कामना भी बाकी है, जब तक मन के अंदर एक कामना भी बाकी है, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। यह इनके अनुभव की बात है। पहुंचना आपने कहां है और करनी देखो कर क्या रहे हो आप। पहले मैं 2 घंटे रोज सिमरन करता था, 1 घंटा सुबह निकाल लेता था, 1 घंटा सायकाल निकाल लेता था। संसार में मुझे सफलता मिली तो 2 वक्त का सिमरन भी छूट गया, 1 वक्त से ही काम चलाने लगा क्योंकि संसार में सफल हो रहा हूं। मैं डूब रहा हूं लेकिन मेरी जो सांसारिक बुद्धि है वो कह रही है तू सफल हो रहा है। इसलिए जो उद्धार का रास्ता था वो छोड़ दिया तूने, जो नरक का रास्ता था वो पकड़ लिया तूने, क्योंकि संसारियों की निकल कर रहा है ना तू। गुरु की कथनी पे तो भरोसा ही नहीं तुझे। हमारी ये गति होती है संसार में चलने, ऐसे करते हैं ईश्वर का सम्मान, ईश्वर की भक्ति, तो कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे। तो इसीलिए यदि आप संसारियों को देखोगे कि आजकल तो गृहस्थ का ये स्टैंडर्ड तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो जिंदगी जी नहीं सकते, तो डूब जाओगे। आपने गुरु के अनुसार सोचना शुरू करना है। छलांग लगाने के लिए आपसे कोई नहीं कह रहा है, लेकिन रास्ता तो सीधा करो ना। त्याग का मार्ग पकड़ते क्यों नहीं? आपने पूर्ण त्याग करना है। होता वो स्थिति आपकी 2 जन्म बाद आए, तो पूर्ण त्याग कैसे कर पाओगे जब आप थोड़ा भी त्याग करने को तैयार नहीं? अभी तो भोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, तो वो तो आपके जीवन में कभी संभावना ही नहीं रहेगी। इसीलिए हो सकता है ये जन्म ही आपसे छीन लिया जाए, पशु योनि में आपको डाल दिया जाए। सत्संग सुनने के बाद भी मेरी ये दुर्गति हो सकती है कि मुझको पशु योनि में डाल दिया जाए। कि जब मनुष्य योनि वाला मैंने कर्म ही नहीं किया, मनुष्य योनि का जो कर्म है जिसके लिए मनुष्य योनि मिलती है वो सतोगुणी जीवन व्यतीत करने वाला कर्म है। तो मैंने सतोगुणी जीवन व्यतीत करना था। कैसा वो सतोगुणी जीवन होता है वो आप संत रविदास में पढ़कर देख लो। वासना विवेक चैप्टर है, उसका जो पहला पार्ट है वासना विवेक, उसमें सतोगुणी जीवन के लक्षण क्या होते हैं पढ़ लो वहां पर, और रजोगुणी जीवन के लक्षण क्या होते हैं वो भी पढ़ लो वहां पर, तमोगुणी जीवन के लक्षण क्या होते हैं वो भी पढ़ लो। ये तीनों में से एक सिलेक्ट कर लेना कि कौन सा जीवन अच्छा है। अपने आप यदि मोह में कारण अपनी समझ ना दिया है तो ये ऐसा करके पढ़ लेना, इन 3 तरह के लोग यदि मुझे दिखाई पड़ जाएं, एक सतोगुणी दिखाई पड़ जाए, एक रजोगुणी दिखाई पड़ जाए, एक तमोगुणी दिखाई पड़ जाए, तो मैं 3 में से किसको पसंद करूंगा। यदि तुम सतोगुणी को पसंद करते हो तो अलर्ट हो जाओ कि यही ठीक है। फिर मैं रजोगुणी बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? ठीक ये है, जब मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं रजोगुणी बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? तो मैंने सतोगुणी बनना है। तो सतोगुणी जो जीवन है यही आपको शरणागति की ओर ले जाता है। सतोगुण काहे में बदलता है, फिर निर्गुण में बदल जाता है। ये शरणागति आपको निर्गुण बना देती है, 3 गुणों से आप मुक्त हो जाते हो, प्रकृति के बंधन से आप मुक्त हो जाते हो। वो प्रकृति का बंधन से मुक्त होना इस देह के अंतर्गत ही है। अभी आप मन रूपी प्रकृति के बंधन में हो, फिर आप ईश्वर रूपी निर्गुण स्थिति के संपर्क में आ जाते हो, उससे आपका संबंध स्थापित होता है, उससे आपकी मित्रता होती है, उसके आप दास बनकर जीते हो। मैं ईश्वर का दास हूं, फिर आप ईश्वर के दास बन जाते हो। अभी आप संसार के दास हो, मन के दास हो, प्रकृति के दास हो आप। इसलिए आपने ईश्वर का दास बनना है तो ईश्वर इस सेवक को कब स्वीकार करेगा? राम ने हनुमान को सेवक स्वीकार किया था, जंगल से अयोध्या उनको ले गए, तो एक दास राम को पसंद आया हनुमान। हनुमान का त्याग क्या था? एक पल भी हनुमान भूलता था कि जो कुछ भी इस शरीर की सामर्थ्य है वो राम के कारण है, जो कुछ भी कर्म इस देह से हो पा रहा है वो राम के कारण हो पा रहा है। उसके तो रोम रोम में राम रम हुए थे, इसलिए राम उसको अपने राज्य में ले गए। तो राम का राज्य मेरी देह के अंदर ही है, तो राम मुझे पसंद तब करेंगे ना जब रोम रोम में मेरे राम बस जाएंगे। इसीलिए सतोगुणी बनने का रास्ता मैंने चुनना है, यही शरणागति का रास्ता है। तो सतोगुणी से मैं निर्गुण स्थिति में चला जाऊंगा, ईश्वर के चरणों में पहुंच जाऊंगा, पूर्ण शरणागत हो जाऊंगा यदि मैंने गुरु की बात मानी, उसके अनुसार जीवन बनाया। ओम।